इसीलिए अल्लाह ने नबियों और मुरसलों को पैदा फरमाया और उनमें से बाज़ को अपनी सिफत रहमान का मज़हर बनाया और बाज़ को अपनी सिफत रहीम का मज़हर, ताकि वो भी महबूब और मोहिब बन जाएं और उसकी फ़ज़ल अज़ीम के साथ एक दूसरे से बाहमी महब्बत से ज़िंदगी बसर करें। सो उसने बाज़ को सिफत महबूबियत से वाफ़र हिस्सा अता फ़रमाया और बाज़ को सिफत मुहिब्बियत से कसीर हिस्सा अता फ़रमाया। इसी तरह खुदा ताला ने अपने वसी फ़ज़ल और दायमी करम से इरादा फ़रमाया और फिर जब ख़ातमुन्नबीयीन और सैदुलमरसलिन सैदना मोहम्मद सल्ला वसम का ज़माना आया तो अल्लाह सुबहानहु ने इरादा फ़रमाया कि वो इन दोनों सिफ़तों को एक नफ्स में जमा कर दे। सो उसने इन दोनों सिफ़तों को आपकी ज़ात में जमा कर दिया। लाखों दरूद और सलाम हों आप पर। इसी वजह से अल्लाह ने इस सूरत के आगाज़ ही में महबूबियत और मुहिब्बियत की सिफ़ात का ख़ास तौर पर ज़िक्र फरमाया है, ताकि उस इरादे की जानिब इशारा हो जाए। और उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद और अहमद रखा, जैसा कि उसने अपना नाम इस आयत में रहमान और रहीम रखा है। ये इस तरफ इशारा है कि ज़िली तौर पर सैदना खैरुल बरिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद के अलावा कोई और इन दो सिफतों का जामे नहीं। और तू जान चुका है कि ये दो सिफतें अल्लाह ताला की तमाम सिफात में से सबसे बड़ी सिफात हैं, बल्कि ये दोनों अल्लाह ताला के जमी सिफाती नामों का लुब लबाब और हकायक की असलियत हैं। और ये हर उस शख्स के कमाल की कसौटी हैं जो तालिब कमाल है और अखलाक़ इलाहिया को अपनाना चाहता है। और इन दोनों सिफात से कामिल हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है, जो सिलसिले नबूवत के ख़ातम हैं। यही वजह है कि आपको इन दोनों सिफात की मानंद रब्बे कोनैन के फ़ज़ल से दो नाम अदा किए गए हैं। उनमें से पहला नाम मोहम्मद है और दूसरा अहमद। जहाँ तक मोहम्मद का ताल्लुक़ है तो ये सिफत रहमान की चादर ओढ़े हुए है और जलाल और महबूबियत के लिबादे में तजल्ली फरमा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेकी और एहसान की वजह से सताइश की गई। और इसमें अहमद ने खुदा ताला के फ़ज़ल से, जो मोमिनों की मदद और नुसरत का मुतवल्ली है, रहीमियत मुहिब्बियत और जमाल के लिबास में तजल्ली फरमाई। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दोनों नाम मोहम्मद और अहमद हमारे रब मन्नान की दो सिफ़ात अर्रहमान और अर्रहीम के मुकाबिल हैं, जो उन मुनक़िस सूरतों की तरह हैं जिन्हें दो मुतकाबिल आयने ज़ाहिर करते हैं। इसकी तफसील ये है कि अहले इरफान के नज़दीक सिफत रहमानियत की हकीकत ये है कि रहमानियत हर ज़ी रूह इंसान या गैर इंसान के लिए खैर की फैज़ रसानी है, जो किसी पहले अमल के बग़ैर खालिसतन बर सबील एहसान होती है। इसमें ना तो कोई शक है और ना कोई इख्तिलाफ़ है कि इस किस्म का खालिस एहसान, जो मखलूक में से किसी काम करने वाले के काम का सिला ना हो, मोमिनों के दिलों को सना मदह और हम्द की तरफ खींचता है। बस वो अपने मोहसिन की खुलूस कल्ब और सेहत नीयत से मदह और सना करते हैं, इस तरह बग़ैर किसी वहम के, जो शक व शुबा में डाले, रहमान यकीनन मोहम्मद हो जाता है। क्योंकि ऐसी इनाम करने वाली हस्ती जो लोगों पर बग़ैर किसी हक के तरह तरह के एहसान करे, उस हस्ती की हर वो शख्स हम्द करेगा जिस पर इनाम व इकराम किया जाता है। और ये इंसानी खिलकत का खासा है कि जब इतमाम नेमत के मुताबिक हम्द अपने कमाल को पहुंच जाए तो वो कामिल महब्बत की जाज़िब बन जाती है। ऐसा मोहसिन अपने मुहिब्बों की निगाह में मोहम्मद और महबूब हो जाता है और ये सिफत रहमानियत का नतीजा है। पस अकलमंदों की तरह गौर व फिक्र कर। इस जगह पर हर साहिब इरफान पर वाज़े हो गया है कि रहमान मोहम्मद है और मोहम्मद रहमान है। बिलाशुबा दोनों मोहम्मद और रहमान का नतीजा एक ही है। बस उसने हक को शनाख्त न किया जिसने इनकार किया। और जहाँ तक सिफत रहीमियत की हकीकत और उसमें पिनहा रूहानी कैफियत का ताल्लुक है, तो वह अहले मस्जिद के आमाल पर इनाम और बरकत का फैज़ है, ना कि अहले दैर पर। और मुखलिस काम करने वालों के आमाल की तकमील और तलाफ़ी करने वालों और मुआविनों और मददगारों की तरह उनकी कोताहियों का तदारुक मकसूद है। और बिलाशुबा ये इफाज़ा रहीम खुदा के तारीफ़ करने के हुक्म में है, क्योंकि वो अपनी ये रहमत किसी अमल करने वाले पर सिर्फ उस वक्त नाजिल करता है जब वो सही तरीक़ पर उसकी तारीफ़ करता और उसके अमल पर राज़ी होता है और उसे फ़ज़ल अमीम का मुस्तहिक पाता है। क्या तुझे ये नज़र नहीं आता کہ وہ کافروں، مشرکوں، ریاکاروں اور متکبروں کے عمل کو قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ ان کے اعمال ضائع کر دیتا ہے اور انہیں اپنی طرف ہدایت نہیں دیتا اور نہ ان کی مدد کرتا ہے، بلکہ انہیں بیجار و مددگار لوگوں کی طرح چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ کسی شخص کی طرف اپنی صفت رحیمیت کے ساتھ متوجہ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے عمل کو اپنی مدد اور اعانت سے مکمل فرماتا ہے، مگر اس وقت جب وہ اس کے کام سے راضی ہو جائے اور اس کی کامل تعریف کرے جو نزول رحمت کو مستلزم ہے۔ پھر جب مخلصین کے اعمال کے کمال پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کمال کو پہنچ جائے تو اللہ احمد ہو جاتا ہے اور بندہ محمد۔ وہ اللہ پاک ہے جو سب سے پہلا محمد اور سب سے پہلا احمد ہے۔ اس وقت مخلص بندہ بوجہ عمل بارگاہ الہی میں محبوب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے عرش سے اس کی تعریف کرتا ہے اور اللہ محبت کے بعد ہی کسی کی حمد کرتا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ کمال رحمانیت اللہ کو محمد اور محبوب بنا دیتی ہے اور بندے کو احمد اور ایسا محب بنا دیتی ہے جو محبوب کا متلاشی ہوتا ہے، اور کمال رحیمیت اللہ کو احمد اور محب بنا دیتی ہے اور بندے کو محمد اور محبوب۔ اس مقام سے آپ عالی مرتبہ امام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معلوم کر سکتے ہیں۔ یقیناً اللہ نے آپ کا نام محمد اور احمد رکھا، اور ان دو ناموں سے حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کلیم اللہ کو موسوم نہ فرمایا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنی دو صفات رحمان اور رحیم میں شامل فرمایا، اس لیے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل عظیم ہے، اور بسم اللہ میں ان دونوں صفات کا ذکر کرنا صرف اس وجہ سے ہے کہ تمام لوگ جان جائیں کہ یہ دونوں صفات اللہ کے لیے بطور اسم اعظم ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جناب الہی سے بطور خلت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو صفت محبوبیت ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ نے آپ کا نام محمد رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو صفت محبیت ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ محمد اس لیے کہ تعریف کرنے والے کسی شخص کی بہت زیادہ تعریف اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک وہ شخص محبوب نہ ہو، اور احمد اس لیے کہ کوئی تعریف کرنے والا کسی کی بہت تعریف نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس سے وہ محبت کرے اور اسے اپنا مطلوب بنا لے۔ بس کوئی شک نہیں کہ اس میں محمد میں لازمی دلالت کے طور پر محبوبیت کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور اسی طرح تمام فضلوں اور انعاموں کے مالک اللہ کی طرف سے احمد کے نام میں محبیت کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے نبی کا نام اس لیے محمد رکھا گیا کیونکہ اللہ نے ارادہ فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظر میں اور صالحین کی نظر میں محبوب بنائے، اور اسی طرح اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا کیونکہ اللہ سبحانہ نے ارادہ فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محب اور تمام مومن مسلمانوں کا محب بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شان سے محمد ہیں اور دوسری شان سے احمد ہیں۔ اس نے ان دو ناموں میں سے ایک نام کو ایک زمانے کے لیے اور دوسرے نام کو دوسرے زمانے کے لیے مخصوص کر دیا، اور اس پاک ذات نے اپنے کلام دنا فتد اللہ، وہ نزدیک ہوا پھر وہ نیچے اتر آیا، سورہ نجم آیت 9، اور قاب قوسین او ادنا میں وہ دو کوسوں کے وتر کی طرح ہو گیا یا اس سے بھی قریب تر، سورہ نجم آیت 10۔ اسی جانب اشارہ فرمایا ہے۔